सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो अभी प्री एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से सफलता के लिए बहुत बहुत और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में ईश्वर आप सबको आत्मशक्ति प्रदान करे, आत्मविश्वास प्रदान करे, ताकि आप स्थिर चित्त के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। दोस्तों, अब समय नहीं बचा है, परसों ही तो आपको एग्जाम देने जाना है। आपके दिल की धड़कनों को सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे होने के बावजूद मैं सुन सकता हूं और महसूस तो कर ही सकता हूं, ऐसा होता है। तो आज मैं मुख्य विषय के तहत कुछ जो आप सबने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के इसी तरह से क्रमशः उत्तर देने जा रहा हूं। दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ गई होंगी और बढ़ना स्वाभाविक है। यह कहीं ना कहीं हमारी संवेदनशीलता को बताता है कि जिस उद्देश्य से हम जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हमने अभी तक काम किया है, उसके प्रति हमारी निष्ठा है और उसे न पाने का एक भय भी मन में, आशंका भी है। तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि एक सीमा के बाद कोई भी चीज बेकार हो जाती है। अगर ये दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ रही हों या यूं कह लीजिए कि आत्मविश्वास बिल्कुल ही खत्म हो रहा हो, तो फिर वो चिंता की बात होती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब आप अपने दिमाग में ठान लेते हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बस खत्म हो गई बात, जो होगा देखा जाएगा, एक वाक्य है केवल और ये चमत्कार कर सकता है। देखा जाएगा। अब देखिए, या तो आप परीक्षा में बैठ रहे हैं या परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। अगर नहीं बैठने का निर्णय किया है तो बात खत्म हो गई, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आपने का फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे तो बैठना ही है, तो फिर ठीक है, देखा जाएगा। जो भी होगा मैदान में देखेंगे, वहां लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और कोई बात नहीं, लड़ते लड़ते गिर जाएंगे ना, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। लड़ाई तो होती ही ऐसी है, कोई गारंटी थोड़ी है कि आप ही जीते, क्योंकि जितने भी लोग उस मैदान में उतर रहे हैं सब जीतने के लिए ही तो उतर रहे हैं, हारने के लिए कौन उतर रहा है। लेकिन सब तो नहीं जीत सकते, कुछ ना कुछ लोग तो हारेंगे ही, अब उसमें कौन हो सकता है हम नहीं जानते। तो इस तरह के थॉट आप अपने दिमाग में लेकर के आइए, तो मुझे लगता है कि इससे काफी मदद मिल सकती है आपको अपने डूबते हुए आत्मविश्वास को सहारा देने के लिए। और देखिए, जो भी मनोवैज्ञानिक इलाज होते हैं उनके इलाज थॉट्स ही होते हैं। हमें विचारों के स्तर पर ही अपने को दुरुस्त करना पड़ता है। और खुद मेरे अपने अनुभव रहे हैं, केवल सिविल सर्विस के नहीं बल्कि जिंदगी के भी बहुत से अनुभव रहे हैं। और ऐसा आप कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि आपको लगेगा कि ये सर क्या बात बता रहे हैं, इससे कुछ हो जाता है क्या, लेकिन करके देखिए, हो जाता है। अभी तक आपने शायद किया नहीं है, अगर किया है तो पूरे विश्वास के साथ नहीं किया है, हो जाएगा। दोस्तों, एक प्रश्न है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। डेफिनेटली रेस अगेंस्ट द टाइम तो वहां होना ही है। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सीधी सी बात है कि जो प्रश्न बहुत कठिन लग रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उनके साथ उलझिए मत, बेवजह अपना वक्त खराब मत कीजिए। जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें तो आप तुरंत करेंगे ही, और जो प्रश्न आपको लगता है कि थोड़े से सोचने के बाद बन सकते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगा दीजिए। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बीच बीच में आप समय जरूर देखते रहें। देखिए, मोबाइल आपको अलाउ नहीं होगा, हो सकता है कि आप जिस हॉल में बैठे हों वहां घड़ी न टंगी हो, और अगर घड़ी टंगी भी होगी तो हो सकता है कि आपको देखने में सुविधा न हो उस घड़ी को, वो आपके पीठ के पीछे पड़ती हो, तो आप बार बार मुड़ करके थोड़ी देखेंगे। और जो एग्जामिनर है, जो विजिलेटर्स होते हैं, वो टोक भी सकते हैं, आप कैसे, क्या, क्यों आप बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, है ना, वो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो बेहतर होगा कि आप अपनी कलाइयों को एक दिन के लिए सही घड़ी से सजा लें। तो बीच बीच में आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि अगर आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं तो कितना वक्त आपने ले लिया है, और मान करके चलिए कि 25 क्वेश्चन में आपने जितना वक्त ले लिया है उसी के चार गुना क्वेश्चंस आपके अभी और बचे हुए, 25 हुए हैं, 75 बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने, मान लीजिए कि अभी आपने लिया 20 मिनट, तो सीधी सी बात है कि आप 60 मिनट और लेंगे 75 क्वेश्चंस के लिए। तो उस तरह से कैलकुलेट करके चलिए। उससे क्या होगा कि आप आखिरी में, ऐसा नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चंस को आप बिल्कुल निपटा रहे हैं कि भैया समय कम बचा है, या केवल 5-7 मिनट ही बचे हैं और 10 क्वेश्चन बचे हैं, पता लगा कि वो 10 क्वेश्चन ही आपके लिए निर्णायक हो रहे हैं, और वो इतने आसान से थे कि अगर आपने उन्हें पर्याप्त समय दिया होता तो वे सही हो गए होते, उसमें से ज्यादातर सही हो गए होते। और उससे पहले के इन क्वेश्चंस को आप समय दे रहे हैं, बेवजह उलझ रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपके समय का जो बंटवारा होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू के 50 क्वेश्चन हम सवा डेढ़ घंटे में करेंगे और बाद के 50 क्वेश्चन हम आधे घंटे में करेंगे, नहीं। क्योंकि आपको जो यात्रा करनी है वो एक अनजान यात्रा है, आपको मालूम ही नहीं है कि आगे आने वाले प्रश्न किस तरीके के हैं, है ना। तो एक अनजान राह पर चूंकि आप चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि समय का विभाजन जो है समान स्तर पर किया जाना चाहिए, और ये आप अपनी घड़ी के आधार पर ही कर सकेंगे, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आया है कि अभी सैटरडे को हम कितने घंटे पढ़ें चूंकि संडे को एग्जामिनेशन है। ये आपके ऊपर है। मेरा जो मकसद है बताने का, या कह लीजिए कि जो पर्पज, जो उद्देश्य है सैटरडे के दिन के बारे में कुछ भी कहने का, वो ये है कि आपके दिमाग में किसी तरह का तनाव नहीं आना चाहिए तैयारी को लेकर के। अब तनाव नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल तो तनाव नहीं आएगा। ये भी पूछा गया कि उस दिन मूवी देखें क्या, वेब सीरीज देखें क्या, ये आर्टिफिशियल तरीके होते हैं। ये मूवी देखें क्या, वेब सीरीज देखें क्या, आर्टिफिशियल इन दिस सेंस कि अगर आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, अपने को तनाव मुक्त कर सकते हैं, तो ठीक है मूवी देख लीजिए, दोस्तों के साथ गप मार लीजिए, घूमने चले जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, आपके ऊपर है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी पसंद नापसंदगी होती है और उसके आधार पर आप निर्णय ले लें। लेकिन मुझे लगता है कि सैटरडे को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सही कहना नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बना रहता है। बिल्कुल अलग हो जाने से कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं तो कमी आ ही जाती है। लगता है कि कहीं मन अपराध बोध से घिर जाता है, अरे कुछ पढ़ ही लेते तो कितना अच्छा होता, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नजर मारिए, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं या पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं एक दो बार नजर मारते रहिए। क्योंकि नई चीज पढ़ेंगे तो तनाव पैदा होगा, उसके बारे में मत पढ़िए, किसी से तैयारी के बारे में बात मत कीजिए, अनावश्यक रूप से तनाव पैदा होगा। बस पलटते रहिए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़े और आपको लगे कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है, अरे मुझे तो अभी और इतना ज्यादा पढ़ना है। लेकिन एकदम खाली रहे ये बात कहना थोड़ा सा मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है लेकिन बहुत खतरनाक प्रश्न यह है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, और ज्यादा प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसका समाधान क्या है? देखिए, असल में जो आप तैयारी कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे ना, जैसे आप पेनाल्टी कॉर्नर पेनाल्टी मार रहे हैं, मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं और पेनाल्टी स्ट्रोक आप कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उसको तो गोल होना ही चाहिए। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि नहीं, गोल हम करें। क्योंकि अगर हम पेनाल्टी स्ट्रोक को ही गोल नहीं में बदल पाएंगे तो फिर दूसरे को गोल में बदलना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां तो हमारे बॉल को रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय गोलकीपर के। तो हम जो तैयारी कर रहे होते हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो किस लिए कर रहे होते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि एग्जामिनेशन हॉल में हम गलतियां ना करें। और गलतियां क्यों नहीं होंगी, कैसे नहीं होंगी, उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है तैयारी करना। अगर हमारे दिमाग में विषय बहुत स्पष्ट है, तथ्य बहुत स्पष्ट है, विषय पर हमारी अपनी पकड़ है, तो सीधी सी बात है कि गलतियां नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग पर समय का दबाव रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर कहीं ना कहीं एक इमोशनल प्रेशर भी होता है कि अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा, 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक प्री भी नहीं निकला है, घर वाले क्या कहेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे, दूसरों को क्या कहेंगे, इस तरह के इमोशनल प्रेशर्स भी हम अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रेशर है, जानते हुए भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां करा देते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। तो हम अपनी गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए ही मित्रों तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्रश्न के बारे में आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते, इसमें तो गलत होने की आशंका ज्यादा है, तो प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, उसे मत टच कीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो बेवजह पता लगा कि इस माइनस मार्किंग के कारण ही आप प्री क्वालिफाई करने से चूक गए। दोस्तों, बीच में जो आपको गैप मिलेगा उसके बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे हैं लोगों ने कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। देखिए, उसके लिए तो हल्का फुल्का भोजन करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप तली हुई चीज़ें, भारी चीज़ें इस तरह खा लेंगे तो फिर क्या है कि कहीं ना कहीं दिमाग सुस्त पड़ जाता है। और जो आपका सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जिसे सीसेट कहते हैं आप, उसमें दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन करेगा ना, मैथमेटिक्स की तरह का काम है वो, तो वहां आपके दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत होगी। तो अब आप देखिए कि जहां आप देने जा रहे हैं सेंटर में, वहां क्या अवेलेबल है। लेकिन मैं जनरली यही सलाह देता हूं कि यदि संभव हो सके तो आप अपना टिफिन या कुछ भी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा घर से ले जाइए और थोड़ा सा खा लीजिए। देखिए, खाया तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको फिर से एग्जाम देना है, आप जबरदस्त रूप से तनाव में हैं। लेकिन बिल्कुल भूखे भी अगर आप रहेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हल्का भोजन करें, थोड़ा भोजन करें, बस इसका ध्यान रखें, ताकि आप पूरी सतर्कता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ सेकेंड पेपर को अटेम्प्ट कर सके। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जिनके मैंने अब आप सबको जवाब दिए हैं। अब तो आप सबके एग्जामिनेशन के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, तब हम लोग और ढेर सारी बातें करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही, न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली हैं, इसके लिए अंगुली गांव जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से सत्य प्रकाश यादव ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सत्य प्रकाश जी, आपका मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अदिति वर्मा भागल हरियाणा से, अमित कुमार, देवी दत्त और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, फिर से शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।